पूज्य संत महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, ईश्वरवाद मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। उसके अनुसार संपूर्ण जीवन को साधनमय बनाने के लिए स्तुति, उपासना और प्रार्थना की चर्चा हुई। स्तुति का अर्थ है उस अनदेखे परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करना। स्वतंत्र सत्ता है उनकी, ऐसा स्वीकार करना, अस्तित्व को स्वीकार करना कहलाता है, आस्तिक होना कहलाता है। और सत्ता की स्वीकृति के साथ ही उनकी अनंत महिमा को स्वीकार करना स्तुति कहलाती है। परमात्मा है और वे अनंत महिमावान है। सत्ता को मान लिया और उसके साथ उनकी महिमा को मान लिया, उनकी महिमा को भी स्वीकार कर लिया हमने, तो हमारे जीवन से स्तुति आरंभ हो गई। स्तुति शब्द का यह अर्थ नहीं है कि हम सुंदर सुंदर शब्दों में, छंदों में, अच्छी ललित भाषा में उनके गुणों का वर्णन करें, यह तो बाहरी बात है। लेकिन जिन महापुरुषों ने, ईश्वर विश्वासियों ने प्रभु की सत्ता को स्वीकार किया, उनकी महिमा को स्वीकार किया, उन्होंने जिन शब्दों में स्तुति को प्रकट किया, वे शब्द केवल कोरे शब्द नहीं है, वह उनका जीवन है। हम लोग भी यदि ईश्वरवादी हैं और इसको अपने में सजीव बनाना चाहते हैं और ईश्वर से अभिन्न होकर सदा सदा के लिए कृतकृत्य होना पसंद करते हैं, तो इस असली अर्थ में हम लोगों को भी स्तुति करनी चाहिए। पहली बात होगी सत्ता को स्वीकार करो, दूसरी बात होगी उसके साथ उनकी महिमा को स्वीकार करो। स्तुति हो गई। उपासना का अर्थ बताया महाराज जी ने, उनके साथ अपनी आत्मीयता का नित्य संबंध स्वीकार करना। नित्य संबंध उसको कहते हैं जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। नित्य शब्द का अर्थ आप जानते हैं, नित्य संबंध का अर्थ होता है जो सदा के लिए है, जिसमें कभी विच्छोह नहीं है, वियोग नहीं है, जिसके टूटने छूटने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे संबंध को नित्य संबंध कहते हैं। परमात्मा हम सभी के नित्य संबंधी हैं, यह तो सत्य है जीवन का। और हम आज से, जब से ईश्वरवादी होने की आवश्यकता हमने अनुभव की, तब से उस नित्य संबंध को अपने द्वारा स्वीकार कर लें, यह उपासना है। उपासना की विधियां बहुत सी हैं, अनेकों प्रकार से उपासना की विधियां सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, प्रचलित हैं, अलग अलग सांप्रदायिक सीमाएं हैं, अलग अलग मजहबी ढंग हैं, बहुत सारी बातें हैं जिससे कि उपासना के विधि विधान में बहुत अंतर पड़ जाता है। और सीमित होना, खास प्रकार के विधि विधान का प्रतिपादन करना, यह भी मनुष्य की सीमित शक्ति के अनुरूप सहायता देने ही के लिए है। लेकिन मौलिक बात क्या है कि आपने उस अलख अगोचर अनंत परमात्मा के साथ अपना नित्य संबंध माना कि नहीं माना। अगर मान लिया है कि वे मेरे अपने हैं और सदा सदा के अपने हैं, इस संबंध को स्वीकार कर लिया आपने तो उपासक हो गए। अब उस भाव को बढ़ाने के लिए, उस संबंध को सजीव बनाने के लिए विधि विधान आपकी चाहे जैसी हो, जो पसंद आए सो करिए, जो गुरु ने बताया सो करिए, जो आपकी परंपरा में है वो करिए, जो आपकी संस्कृति में से आई वो करिए। साकार उपासना भी होती है, निराकार भी होती है, मानसिक पूजा भी होती है, क्रियात्मक पूजा भी होती है, स्थूल शरीर को लेकर के भी प्रभु के प्रेम को बढ़ाने के लिए बहुत प्रकार की विधि की जाती है, भाव शरीर को लेकर के भी, भाव शरीर से भी बड़ी पूजा होती है परमात्मा की और उसमें भी खूब सजीवता आती है। तो बाहरी बातों में हर भाई बहन स्वाधीन है, जिसकी जैसी रुचि हो, जिसकी जैसी बनावट हो, बाहरी बातों में कोई पराधीनता नहीं है, हर व्यक्ति स्वाधीन है। लेकिन मौलिक बात जो है कि उनके द्वारा उनके नित्य संबंध को, आत्मीय संबंध को अपने द्वारा स्वीकार करना और सदा के लिए स्वीकार करना और सदा के लिए अन्य सब संबंधों को उस एक संबंध में विलीन करना, यह जो मौलिक सत्य है, इसको नहीं मानने पर कोई विधि विधान सफल नहीं होता है। इस बात को आप सोचिएगा। और जिस प्रकार का कथानक है, इतिहास है, उस ढंग से सोच के देखो कि मीरा जी को पहले उनकी माता जी ने यह बात बताई कि गिरधर गोपाल तेरा पति है, तो पहले उन्होंने माना, तब उसके बाद उनको रिझाना आरंभ किया। पूजा करेंगी, पुष्प चढ़ाएंगी, चरणामृत लेंगी, संगीत सुनाएंगी, नृत्य दिखाएंगी, ये पीछे शुरू हुआ। पहले उन्होंने अपने गिरधर गोपाल को अपना पति कहकर स्वीकार किया, तो पहले स्वीकृति है और स्वीकृति में से साधना की अभिव्यक्ति है। ये बात समझ में आती है? पहले परमात्मा के प्रति अपने आत्मीय संबंध की स्वीकृति है। पहले उन्होंने स्वीकार किया कि गिरधर गोपाल मेरे पति हैं, तो अब पति हैं मेरे, तो मेरा संबंध केवल उन्हीं से है और कोई दूसरा मेरा हो ही नहीं सकता। फिर जब माता पिता ने विवाह रचाया और राजा भोज विवाह करने के लिए आए, तो मीरा जी कहें कि मैं तो गिरधर गोपाल की हूँ, तो यह सब कुछ उनका है, अब ये दूसरा आदमी कैसे हमारे हाथ को छू सकता है। तो वो छोटी सी बालिका पाणी ग्रहण संस्कार के समय पंडित जी कह रहे हैं बाई जी का हाथ निकालो, हाथ में हाथ पकड़ाया जाए, तो बाई जी ने हाथ निकाला ही नहीं, दिया ही नहीं, मुट्ठी बांध करके जबरदस्ती रोक के रख लिया कि यह तो गिरधर गोपाल का है, इसको दूसरा कोई छू कैसे सकता है। तो यह स्वीकृति है कि उपासना की विधि है? स्वीकृति है। स्वीकृति मनुष्य के अहम को बदल डालती है। जितना मुझे अवसर मिलता है सत्संगी भाई बहनों की सेवा में जीवन का सत्य सुनाने के लिए, बारंबार आपका ध्यान इस बात पर ले जाती हूँ मैं कि तुम्हारा जो अहम रूपी अणु है उसका बड़ा ही विलक्षण स्वरूप है, बड़ी विलक्षण रचना है। क्या है कि वह जब अपने को अविवेक पूर्वक शरीर के साथ मिला दे तो शरीर के समान बनने बिगड़ने वाले सब लक्षण उस पर आरोपित हो जाएं, और आप ही स्वयं ही अपने असली स्वरूप के अनुसार अलौकिक तत्वों से रचे हुए स्वभाव के अनुसार जब अलौकिक परमात्मा से जोड़ लेते हैं तो अलौकिकता सब आप ही के भीतर प्रकट हो जाती है। बड़ी विलक्षण बात है। मीरा जी ने गिरधर गोपाल को अपना पति मान लिया तो इस मान्यता में से, इस स्वीकृति में से उनका विचार, उनका भाव, उनका व्यवहार सब स्वतः ही प्रकट हो गया। इसीलिए मानव सेवा संघ की प्रणाली में कहा जाता है कि सत्संग करो। सत्संग करने वाली बात है, वो आपका पुरुषार्थ है, और साधन होने वाली बात है। स्वामी जी महाराज ने हमेशा कहा कि भाई ध्यान करोगे क्या, ध्यान हो जाएगा, याद करोगे क्या, स्मृति जग जाएगी। तो जो लोग स्वयं को बदलते नहीं हैं, अपने संबंध को ठीक नहीं करते हैं, विश्वास को ठीक नहीं करते हैं, अनित्य से संबंध रखेंगे और नित्य का ध्यान करेंगे तो परिणाम क्या होगा? चाहते हैं नित्य का ध्यान करना और जबरदस्ती अनित्य का चिंतन उनके भीतर घुसा रहता है। यही होता है, शरीर से संबंध रखेंगे और भगवान का भजन करना चाहेंगे तो भजन जबरदस्ती शरीर का होने लगता है। भजन शब्द का अर्थ सुनाया महाराज जी ने, आवश्यकता अनुभव करना। तो जिसने शरीर को अपना माना उसके भीतर भगवत भजन के काल में शरीर का चिंतन जबरदस्ती घुस जाता है। घुस जाता है कि नहीं? अगर आपको किसी डॉक्टर ने बता दिया हो कि तुमको कोई घातक बीमारी लग गई है और आप में शरीर का विश्वास टूटा नहीं है, नहीं छोड़ा है आपने, तो शरीर का विश्वास नहीं छोड़ा, शरीर का सहारा नहीं छोड़ा, शरीर को अपना मानना नहीं छोड़ा, और थोड़ी देर के लिए विधि विधान के अनुरूप भगवान का भजन करने, चिंतन करने बैठे, तो उससे भगवत चिंतन के बीच में शरीर का चिंतन जबरदस्ती घुस जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने विश्वास किया है, उससे आपने संबंध माना है, तो माने हुए संबंध का प्रभाव अपने पर होता है, अपने विश्वास का प्रभाव अपने पर होता है। इसलिए सत्यदर्शी संत ने ईश्वर विश्वासी साधकों को सलाह दी कि भाई उपासना का मूल मंत्र है प्रभु के साथ अपने नित्य संबंध को स्वीकार करना। स्वीकृति की ही बात है हमारी ओर से, सत्य तो पहले से विद्यमान ही है। जो जो सोर्स ऑफ लाइफ है, जो जीवन का उद्गम है, जिसमें से हम सबकी उत्पत्ति हुई है, जिसकी सत्ता पर हम सब लोगों की सत्ता आधारित है, उससे संबंध टूटना कभी संभव है क्या? जी नहीं है। तो हमारी विमुखता काल में भी हमारे जीवन का तार उनसे लगा रहता है कि नहीं? लगा रहता है। तो उधर से कोई कमी तो हुई नहीं, उधर से संबंध टूटा नहीं। ये आधुनिक पति पत्नी का संबंध नहीं है कि कोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्री में दस्तखत कर दिया कि हम आज लोग, आज हम दोनों पति पत्नी अपने को स्वीकार करते हैं तो संबंध बन गया, और कुछ दिनों के बाद जाके वहाँ तलाक कर दे आए तो तलाक हो गया, संबंध टूट गया। तो ये दुनिया का बनाया हुआ संबंध नहीं है कि बना लेने से बन जाएगा और तोड़ देने से टूट जाएगा। ये बनाने से बनता होता तो तोड़ने से टूट जाता, ठीक है? तो ये बनाया हुआ नहीं है, हमारी ओर से उपजाया हुआ नहीं है, यह तो जीवन का जो स्रोत है, जो जो उद्गम है जिसमें से सब प्राणियों की जिंदगी उद्भूत होती है, वो मेन सोर्स ऑफ लाइफ, मेन स्प्रिंग ऑफ लाइफ, संपूर्ण जीवन का जो उद्गम है उसी में से हम सब लोगों को जिंदगी मिली हुई है, उसी की सत्ता पर हमारी सत्ता आधारित है, तो उससे कनेक्शन कट ऑफ तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको कोई नई बात बनानी नहीं है। भूल गए हैं हम लोग, विमुख हो गए हैं, उसकी अवहेलना करके उसी का प्रतिरूप, उस अव्यक्त का प्रतिरूप जो यह व्यक्त जगत है, बनने बिगड़ने वाले जो दृश्य हैं, उन दृश्यों को पकड़ करके हम उससे सुख लेना पसंद कर रहे थे, तो उस अनंत प्रेम स्वरूप के प्रेम का कोई स्वाद नहीं मिला। भूखे प्यासे होकर के बेचैन होकर फिरने लगे। जिज्ञासा जागृत हुई तो संत महानुभावों ने, अनुभवी जनों ने मंत्र बता दिया। प्रेम प्यास की प्यास से बेचैन होकर आप फिरने लगे तो किसी भगवत अनुरागी ने उस प्रेम सागर का पता बता दिया। यही हुआ ना, और तो कोई नई बात नहीं की किसी ने। एक बार एक जगह पर सभा हो रही थी तो एक सज्जन आए, बड़े क्लास वन ऑफिसर्स रहे थे रिटायर्ड होने के बाद, तो जिस तरह की बातचीत करने की आदत थी उनकी, उसी आदत के अनुसार स्वामी जी महाराज के पास आकर बैठ गए और कहने लगे कि स्वामी जी महाराज, मिस्टर गॉड के पास टेलीफोन है कि नहीं? तो महाराज ने कहा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे नंबर बता दीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने नंबर गिना दिए उनको, लो कर लो बातचीत। कनेक्शन कभी कट ऑफ होता नहीं है भाई, एक्सचेंज की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है भाई। बाहरी टेलीफोन का कनेक्शन वो कोई लगावे जुटावे, बीच में तार खराब हो जाए, मशीन खराब हो जाए तो बातचीत न हो। तुम्हारा उनका कनेक्शन तो ऐसा अमिट है कि वो काल के व्यवधान से, बाहरी परिस्थितियों के परिवर्तन से, या मेरी नालायकी से, मैं भूल गई उनको, विमुख हो गई उनसे, और उनके विपरीत उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि के बनने बिगड़ने वाले दृश्यों से चिपकना पसंद किया, तो कुछ भी नालायकी मैंने की, मेरी नालायकी से हमारे उनके बीच का जो अटूट संबंध है वो टूटा नहीं, बिगड़ा नहीं, वहाँ कोई व्यवधान नहीं आया, वो तो सदा के लिए है। अगर नहीं होता, मेरे मानने से बन जाता तो मेरे न मानने से बिगड़ जाता। इसलिए मुझको तो इस सत्य के दर्शन से बड़ा बल मिला कि मैं याद रखूं तब भी, मैं भूल जाऊं तब भी, मैं मान लूं तब भी, मैं न मानूं तब भी, हमारे और उनके बीच का जो संबंध है वो कभी टूटता नहीं। तो कितनी जोरदार बात है। अब अपनी तरफ से क्या करना है कि बिना देखे, बिना जाने, बिना याद आए केवल मान लो। तो मान लेते हैं, अभी भी होता है मेरे सामने, कई बार ऐसे होता है। बचपन से ही बड़े समूह में रहने का मौका मिला, हजारों हजार विद्यार्थियों के बीच में रहे, कहीं पर किसी से भेंट हो गई, और अब साधक समाज है, स्वामी जी महाराज के सामने से घूमते घामते बृहद समाज में 30 वर्ष बीत गए, तो कहीं पर किसी से भेंट हो गई और उसको याद है कि मेरा उसका परिचय है, मुझको याद नहीं है। तो बहुत कोशिश करती हूँ, अपने को ध्यान देती हूँ कि होगा होगा होगा, फिर नहीं याद आता है तो उसके कहने से मान लेती हूँ मैं। यहाँ ठीक है भाई, लखनऊ स्टेशन पर एक बार मैं उतर रही थी तो एक लड़की महिला थी, बुरका ओढ़े हुई थी, तो मैंने तो उसको देखा नहीं, उसने मुझको देख लिया तो आकर के एकदम मेरी कमर में हाथ डाल करके चिपक गई, लटक गई, दीदी आप यहाँ कहाँ, दीदी आप यहाँ कहाँ, कैसे आई है, कैसे आई है। तो मैं उसको देखने लगी तो मुंह तो दिखाई नहीं दिया, बुरका ओढ़े हुई थी पूरा, तो देख तो नहीं सकी मैं। तो मैंने पूछा तुम कौन हो भाई, कैसे पहचानती हो मुझे। तो उसने याद दिलाया इतने इतने साल के भीतर, 4 बरस वुमेन्स कॉलेज में मैं आपकी स्टूडेंट थी, आपने मुझको पढ़ाया था। हमने कहा तू यहाँ कहाँ से, तो कहने लगी विवाह होने के बाद लखनऊ में आ गई हूँ, यहाँ रहती हूँ। खूब प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, न मैंने शक्ल देखी न पहचाना। खूब उसके भी आंसू आए, रोई, खूब हाल पूछी, खूब प्यार किया, खूब प्यार लिया, हमने विदा कर दिया, चली गई। तो हमने देखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, शक्ल देखने में नहीं आई, लेकिन अब उसके हृदय का भाव मैं इनकार कैसे करूँ। उसने कहा कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपने 4 बरस मुझको पढ़ाया, अमुक अमुक साल में हम थे, ऐसी ऐसी लड़कियां थी उस ग्रुप में, ऐसा सब्जेक्ट था हमारा, ये हुआ वो हुआ, सब उसको याद है। अब उसने सुना दिया मुझको, और बिना मुंह देखे बिना पहचाने हटा नहीं सकती थी वो बुरका, क्योंकि उसके ससुराल के, उसके ससुर ससुर पति सब लोग आसपास खड़े थे। तो पर्दा के परिवार वाली मुसलमान लड़की, तो उसने पर्दा हटाया नहीं और खूब मुझसे प्रेमालाप कर लिया और श्रद्धा भक्ति दिखला करके चली गई। और मैंने मान लिया कि हाँ तुम्हें एक तो मेरी स्टूडेंट रही होगी, अब क्या करें, अब कह रही है कि मैं हूँ। तो ऐसा संबंध जो हमारा उनका है, आप सभी भाई बहनों का है, मानने वालों का भी है और न मानने वालों का भी है, प्रेमी होने वालों का भी है और बिछुड़ने वालों का भी है। ऐसा जो संबंध है उसकी सत्यता, उसकी नित्यता में आप विश्वास करिए, सचमुच आप देखेंगे कि बिना किसी दूसरे विधि विधान के आपके भीतर उनका होनापन ऐसा बढ़िया से प्रकट हो जाता है कि वे परमात्मा स्वयं ही आपको इस बात को जनाने के लिए आतुर हो जाते हैं कि मेरे प्यारे तूने बड़ी बहादुरी की, देखे हुए जगत को इनकार कर दिया और मुझ बिना देखे को स्वीकार कर लिया, तो तेरी इस बहादुरी पर मैं आनंदित हो गया हूँ और अब तू देख ले मुझको, मैं तेरे ही में विद्यमान हूँ। यह बात साधन काल में परमात्मा अपने विश्वासियों को बता देते हैं, दिखा देते हैं। ये तो अब उनकी अपनी मौज है ना, कोई कानून तो इस पर लगाया नहीं जा सकता, कोई टेक्निक बाहर से बनाया नहीं जा सकता, कोई मेथड नहीं बनाया जा सकता कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, वो नहीं है। उससे नित्य विद्यमान का अपना प्रेमी स्वभाव है, और सचमुच मैं इसमें मनुष्य की बहादुरी मानती हूँ, इसलिए मानती हूँ कि देखे हुए को इनकार कर देना होता है, नहीं 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 ये सब मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो तुमको क्या चाहिए भाई। तो मुझको तो उस अपने नित्य संबंधी का प्रेम चाहिए, तो बिना देखे परमात्मा को अपना पति मान लेना, पुत्र मान लेना, मित्र मान लेना और सब कुछ उसके प्रति न्योछावर कर देना, अपने पर से अपना अधिकार उठाकर उनका सर्वाधिकार सुरक्षित कर देना, सर्वाधिकार है तो उन्हीं का, और साधक की भाषा में कहेंगे तो कहेंगे कि हे प्रभु, इस तन पर, इस मन पर, इस धन पर, इस जीवन पर तुम्हारा अधिकार मानता हूँ मैं, तुम्हारे अधिकार में छोड़ता हूँ मैं। तो ये प्रारंभ की भाषा हो गई। और थोड़ा सा आपको परिचय मिल गया उनकी विद्यमानता का, तो वे अपनी महिमा को आप ही आपके भीतर प्रकाशित कर देंगे, तो आप कहने लग जाएंगे कि सदा सदा की मीरा दासी। अरे मैंने तो भूल से कहा कि तुम्हारे अधिकार में सौंपती हूँ, इसके मालिक तो तुम सदैव के हो। सदा सदा का यह जीवन तुम्हारा है, सदा सदा का यह सब कुछ तुम्हारा है। तो थोड़े ही दिनों के बाद वे महामहिम अपनी महिमा को आपके भीतर स्वतः ही प्रकाशित कर देंगे, तो आपको यह बात सत्य के समान दिखने लग जाएगी कि अरे मैं तो भूल ही गया था, ये तो उन्हीं का था, ये मेरी भूल थी कि मैंने अपना माना था सब सदा सदा का तुम्हारा ही सर्वाधिकार है। तो अब मैं ऐसा कहती हूँ कि उनका सर्वाधिकार सुरक्षित रहने दो, अपनी दखल मत डालो उसमें। अपनी ओर से अपना अधिकार मानेंगे हम लोग तो उसी में फंस जाएंगे, अधिकार सुरक्षित रहेगा भी नहीं, भार ढोया जाएगा ही भी नहीं, और मालिक पने के बोझ से दबे भी जाएंगे, मरे भी जाएंगे, और उस मिल्कियत को छोड़ेंगे भी नहीं, तो कितनी दुर्दशा होगी। वस्तु छीन जाएगी, शरीर नाश हो जाएगा, और हाय मेरा चला गया, तो कितनी दुर्दशा होगी कि नहीं होगी। तो उस दुर्दशा से बचना है अपने को, इसलिए उस जगतपति की, उस सर्वश्रेष्ठ की, उस अनंत ऐश्वर्यवान की महिमा को मान लो और उनका सर्वाधिकार सुरक्षित रहने दो। उनकी ओर से तो है ही है, मेरे दखल डालने से उनके ऐश्वर्य में कोई कमी आती है क्या? नहीं आती है। तो वे अपनी ओर से ढील दे देते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, मेरा बच्चा अधिकार मानने में सुख लेता है तो थोड़ा इसका भी मजा देख ले, तो वो तो रोकेंगे नहीं। स्वामी जी महाराज कहते कि देखिए जी, समुद्र में मछलियां उछल कूद मचाती हैं तो समुद्र को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो हमारे भीतर हमारी ही भूल से उत्पन्न हुए विकार मेरे भीतर भी उछल कूद मचाते हैं और बाहरी समाज में भी उछल कूद मचाते हैं। आदमी के भीतर के विकार जो हैं, क्रोध है, क्षोभ है, लोभ है, असंतोष है, अभिमान है, हमारे विकार जो हैं भीतर भी हलचल मचाते हैं और प्रभु की इस विशाल सृष्टि में बाहर भी उछल कूद मचाते हैं। लेकिन हमारे इस उछल कूद से, हमारी इस हलचल से उस महामहिम की महिमा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वो सर्वाधिकार सदैव ही उनका सुरक्षित है। और सचमुच वे ही हैं जगतपति होने के लायक, जगतपति कहलाने के लायक, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के संचालन को कायम रखने के लायक। अपनी ओर से हमें क्या करना है कि उनके नित्य संबंध को अपनी ओर से स्वीकार करके उनके सर्वाधिकार को सुरक्षित रहने देना है, अर्थात तन पर, मन पर, धन पर, जीवन पर, कुटुंब पर, समाज पर, पशु पक्षी वनस्पति पर, किसी पर अपने अधिकार का दोष मत लगाओ। तो तुम हो गए अधिकार शून्य और ये सब कुछ हो गया तुम्हारी ओर से उनके समर्पित, तब देखो क्या आनंद आता है। ये हो गई उपासना। अब कितनी माला जपोगे, कितनी संख्या पूरी करोगे, किस नाम से पुकारोगे और कैसे क्या करोगे, ये तुम्हारी अपनी मौज है। अगर उस क्रिया का सहारा लिए बिना न रहा जाए तो कर डालना, और करने का जी न चाहे तो छोड़ देना, प्रिय लगे तो उसमें शामिल हो जाना, भार लगे तो कोई चिंता मत करना। जीवन का जो सत्य है, उस सत्य की स्वीकृति से साधक का काम बहुत ही हल्का हो जाता है। एक बार मान लिया तो उस मान्यता के प्रभाव से, सत्य की स्वीकृति से मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियां सब अपने आप परिवर्तित हो गई। महाराज जी को इस बात की बड़ी पीड़ा थी कि क्या बताएं, अहम को बदले बिना, असत स्वीकृति को छोड़े बिना, सत्य स्वीकृति को स्वीकार किए बिना साधन की अभिव्यक्ति नहीं होती। तो साधक करते क्या है कि सत्य की स्वीकृति पर उनका ध्यान न दिलाया जाए और बाहर से विधि विधान पकड़ा दिया जाए तो न करते बनता है न छोड़ते बनता है। कितनी बार साधक मुझसे कहते हैं कि भाई क्या करें, पाठ, एक महिला कहने लगी इसी जगह बैठ करके कि क्या करें, नित्य नियम का जो है मेरा पाठ का तो वो किए बिना रहा नहीं जाता, और जब करने बैठती हूँ तो जल्दी जल्दी पन्ना उलटने का मन होता है कि बहुत सा काम नुकसान हो रहा है, जल्दी जल्दी करके खत्म करो। तो करने लगो तो भार लगे और छोड़ दो तो चैन ना आवे, तो एक नई मुसीबत साधक के लिए हो गई ना, न किया ही जाए न छोड़ा ही जाए। तो सत्यदर्शी संत स्वामी जी महाराज ने जो मानव जीवन को देखा, अपनी रितंभरावस्था में देखा, बुद्धि की समता में, शरीरों की असंगता में, जहाँ स्वयं प्रकाश्य का ज्ञान स्वतः प्रकाशित होता है, उस प्रकाश में उन्होंने मानव जीवन का सत्य देखा, तो वो देख करके निवेदन करते हैं कि भाई तुम्हारे अहम रूपी अणु में विलक्षण शक्ति है, तुम उस सत्य के साथ, उस नित्य संबंधी के साथ संबंध स्वीकार कर लो तो तुम्हारी उस बहादुरी से, तुम्हारी उस स्वीकृति से मन, चित, बुद्धि, अहम सब अपने आप ही बदल जाएंगे, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो उनको बड़ी पीड़ा होती थी कि संसार की मुसीबतों से थका हुआ व्यक्ति संत के पास आता है, गुरु के पास आता है, सत्संगी बनता है, साधक बनता है, तो साधक बनके आवे, सत्संगी बनके आवे तो उसके सिर पर मैं भी एक मुसीबत लाद दूं कि जो न कर सके न छोड़ सके, यही होता है ना। अहम को बदले बिना, स्वीकृति को बदले बिना नियम पकड़ा दिया गया, इतनी संख्या में ये जप करो, इतनी संख्या में ये पाठ करो, इतनी देर ये ध्यान करो, इतनी देर ये करो, तो अहम को बदले बिना, स्वीकृति को बदले बिना, असत्य संबंध को छोड़े बिना, नित्य संबंध को स्वीकार किए बिना, सब विश्वास एक विश्वास में विलीन करो, सब संबंध एक संबंध में विलीन करो, इसके किए बिना जब साधक के बेचारा साधन करने चलता है तो ध्यान करो तो ध्यान न लगे, भजन करो तो भजन न बने, नाम लेना शुरू करो तो नाम न लिया जाए, माला जपना शुरू करो तो माला न जपा जाए। मैंने तो देखा है, अपने जीवन को देखा है, जिन्होंने परमात्मा को अपना आत्मीय करके स्वीकार कर लिया, उस आत्मीयता के रस में वे ऐसे मस्त हो जाते हैं कि वे शरीर और संसार को भूल जाते हैं। मैंने शरीर और संसार को इम्पोर्टेंस देकर, शरीर और संसार को महत्व देकर, एक अच्छा मनुष्य हूँ मैं तो सब मेरा अच्छा अच्छा समाज की दृष्टि में निभना चाहिए, इसको महत्व देते हुए जब पूजा करने बैठूं तो पूजा के आइटम्स को भूल जाऊं, फूल चढ़ाया तो चंदन चढ़ाना भूल गई, जल चढ़ाया तो तुलसी पत्र डालना भूल गई। मैंने तो देखा है, अपने को देखा है, सुनी हुई कथा नहीं सुना रही हूँ, गपशप नहीं सुना रही हूँ, कल्पना और अनुमान की चर्चा मैं आपके सामने कभी नहीं करती हूँ। इसलिए नहीं करती हूँ कि मेरे गुरु ने मेरी निष्ठा के अनुसार मुझको विश्वास दिलाया कि संसार को तुम्हारा उपदेश सुनने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे भीतर वक्ता होने का राग था, तुम्हारे प्रेमास्पद ने तुमको राग रहित करने के लिए श्रोता का वेश बनाया है। मैं उनको, सर्वज्ञ को, परम हितैषी को कल्पना सुनाऊंगी, अनुमान सुनाऊंगी, तो मैं कल्पना और अनुमान नहीं सुनाती हूँ, जीवन का सत्य सुनाती हूँ। मैंने अपनी दशा देखी है, संसार का महत्व मानो और भगवान की पूजा करने बैठो तो पूजा के आइटम्स भूल जाते हैं, और परमात्मा को अपना मानो और नाम लेने बैठो तो हाथ से माला छूट जाती है, अहम उस अनंत में जाके जुट जाता है, प्रेम के प्रभाव में शरीर और संसार को भूल जाता है व्यक्ति, तो माला कहाँ याद रहेगी। तो पूजा की ये विधि है भाई, तो सत्य को स्वीकार न करो और अनित्य शरीर के आधार पर, स्थूल वस्तुओं के आधार पर उस सर्वव्यापक को रिझाना चाहो तो गलती हो जाती है। उनको इनकार नहीं है, वे तो जानते हैं कि सब मेरा है, स्थूल और सूक्ष्म सब मेरा है, उनको तो मालूम है। धरती, आकाश, पहाड़, नदी, कांटे, पुष्प सबको वे निज अवयव करके धारण करते हैं, उनको तो मालूम है कि सब उनका है, लेकिन अपनी दशा विचित्र है। भगवान का भजन करने चलो तो संसार का चिंतन घुस गया, घर के काम तो काम याद है, सभ्यता याद है, शिष्टता याद है, अब उसके चिंतन से परेशान है तो पूजा के समय पूजा के आइटम ही भूल गए। एक वस्तु अर्पण किया, दूसरी चीज छूट गई, एक काम पहले किया जो पहले करना था तो पीछे रह गया। बहुत बार ऐसा होता है, खूब देखा है मैंने। तो इसलिए जो सचमुच मानव हैं, जागृत हैं, ईश्वर विश्वास के आधार पर अपने जीवन को पूर्ण करना पसंद है जिनको, उनकी सेवा में निवेदन है कि भाई स्तुति, उपासना और प्रार्थना, इनका सही अर्थ ग्रहण करो और उस ढंग से जीवन आरंभ करो तो अपने में जो कमी रह जाएगी उसकी पूर्ति में वे अनंत परमात्मा कभी चूकेंगे नहीं। मैंने ऐसा भी देखा था, दीपक जलाया गया और हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अब बड़ी परेशानी भीतर भीतर लग रही है दीपक जलाने वाले को, हाय अब कैसे करें, अब तो दीपक बुझ गया, अब कितनी देर में DSLI मिलेगी, कितनी देर में मंगाएंगे, अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे। तो जिसकी सच्ची निष्ठा है तो उसके भीतर व्याकुलता पैदा हुई कि कैसे करें कैसे करें। तो देर नहीं लगी, मेरी आंखों के सामने की बात है, कहने वाले ने कुछ कहा नहीं, मुख से कोई शब्द का उच्चारण नहीं किया, भीतर से बेचैनी लग रही है, हाय देर हो जाएगी, कैसे करें अब कैसे करें। तो बुझा हुआ दीपक जल गया। तो उनको देर लगती है क्या? वे स्थूल को स्थूल अपने से अलग जान करके छोड़ते हैं क्या? वो नहीं है, सब स्थूल उनका, सब सूक्ष्म उनका, सब लौकिक उनका, सब अलौकिक उनका, उनसे भिन्न का तो कुछ है ही नहीं है। तो छोटी सी छोटी वस्तु अगर आपके भीतर की आत्मीयता है, प्रियता है, अपनापन है, प्रेम की सजीवता है, प्रार्थना की सजीवता है, तो सब उनको स्वीकार्य है,